महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 16
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाधवल विख्यातम् महाबंधम नमामि।
यह श्री भगवान भूत बलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें चौथी पुस्तक में तीसरा अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और अभी हम आए पृष्ठ संख्या 67 पर। 67 जघन्य अनुभाग बंध में अंतर की प्ररूपणा चल रही है और उसमें हम मार्गणाओं में देख रहे थे। अभी हम नीचे का पैराग्राफ है वह 158 नंबर का ज्ञान मार्गणा की बात चलेगी। तो पहले मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी, यानी वो गुणस्थान कौन सा है मंजू?
पहला और दूसरा दोनों।
इन जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। तो चार घाती कर्मों का जघन्य कहाँ होता है? सातवें गुणस्थान के सन्मुख वाले के। और गोत्र कर्म का जघन्य सातवें। तो अंतिम समय है तो दोबारा लौट कर उसका मति अज्ञानी रहते हुए जघन्य नहीं हुआ, बाद में बीच में मति शुद्ध ज्ञानी हो जाएगा, सम्यक ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए अजघन्य का भी अंतर नहीं है। हाँ, गोत्र कर्म का नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग बंद होता है सातवें नरक में। सम्यक तो किस अनुमुख वाले को? अंतिम समय में। तो बाद में मार्गणा ही बदल जाती है, इसलिए जघन्य का भी अंतर नहीं है। मति अज्ञानी रहते हुए फिर दोबारा जघन्य कैसे होगा? क्योंकि वो तो अभी एक समय में समय दृष्टि होने वाला है और उसके पहले तो अजघन्य बंध चल रहा था कंटिन्यूअस। मति अज्ञानी उनको जो अन्य जो बंध है वो सारा अजघन्य है, इसलिए अजघन्य का भी अंतर नहीं है और जघन्य का भी अंतर नहीं। शेष कर्मों का भंग नपुसक वेदी जीवों के समान है। शेष कर्मा भी कौन से चार घाती लिए? गोत्र लिया। अब कौन सा वेदिनी और नाम तो मध्यम परिणाम में होता है। तो मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी में वेदिनी के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर कितना होगा? एक समय। और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोग। अब क्या कहते हैं? उत्कृष्ट अंतर वही तो मैंने कहा नपुसक वेदी देख लो। ये लेफ्ट पेज पर 66 पेज पर ओग के समान है बताया था। और ओग में हमने देखा था जगन्य एक समय और उत्कृष्ट असंख्यात लोग। असंख्यात लोग इसलिए देखा था कि बादर एक इंद्रिय भी उसका जगन्य कर सकते हैं और वो सूक्ष्म में चला गया लगातार तो नहीं होता। आयु में क्या देखा था? ओग के समान। तो जगन्य अंतर एक समय से यहाँ पर भी असंख्यात लोग, क्योंकि ऐसे परिणाम दोबारा होकर टोटल परिणाम कितने असंख्यात लोग। तो एक बार जगन्य हो जाए और इतने काल के बाद फिर दोबारा जगन्य होगा ही होगा। ऐसा नियम है। एक समय जगन्य, जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात। हाँ, अजगन्य के लिए एक से चार समय
बराबर।
आयु के लिए भी वही होगा। अच्छा, वो वाला मति अज्ञानी शुद्ध अज्ञानी है तो 33 आगे क्यों नहीं होगा? नहीं, पर वो जगन्य नहीं कहे, अजगन्य के लिए। अजगन्य के लिए तो होगा। हाँ, मिथ्या दृष्टि है, सातवें नरक की आयु बांधी है अजगन्य वाली। पूर्व कोटि के 1/3 पहले हा? और वहाँ जाके 33 आगर के लास्ट में मत्य ज्ञानी है। मत्य ज्ञानी को तो बोल जाते। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, यानी सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी यही बात घटित होगी। विभंग ज्ञानी जीवों में चार घातिक कर्म और गोत्र कर्म के जगन्य और अजगन्य अनुभाग बंध का अंतर काल नहीं। अभी जैसे हमने मत्य ज्ञानी में देखा था, क्यों नहीं है? क्योंकि चार घाती का तो संयम के सन्मुख वाले को होगा और गोत्र का तो सातवें नरक में होगा। अंतिम समय में जगन्य है और मार्गणा पलट जाएगी, इसलिए उसका जगन्य का भी अंतर नहीं, अजगन्य का भी अंतर नहीं। वेदनीय और नाम कर्म के जगन्य और अजगन्य अनुभाग बंध का अंतर काल सामान्य नारकियों के समान है। जगन्य का एक समय के अंतर से होगा और उत्कृष्ट अंतर विभंग ज्ञानी लेना है तो 33 अगर वाला लेना कुछ कम। मैंने पहले एक बार उसने जगन्य किया और लास्ट में एक बार किया, बीच का कुछ कम कर दिया। आयु कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुक्त है। देखो, ये आयु कर्म का जगन्य तो नारकी नहीं बांधेंगे, मनुष्य 3 इंच बांधेंगे और उनका विभंग ज्ञान कंटिन्यूस अंतर्मूर्त तक ही टिकता है, इसलिए यहाँ उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त लिखा। अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 6 महीना है, क्योंकि ये तो नारकियों में तो घटित होगा परंतु उसका एक ही भव लेना पड़ेगा, क्योंकि विभंग ज्ञान कंटिन्यूस दूसरे भव में नहीं जाएगा। और आयु का बंध अर्लीस्ट 6 महीने पहले होता है और फिर अंत में फिर दोबारा हो जाएगा। कल में आई बात हाँ, ये 6 महीने विभंग ज्ञानी की बात है। विभंग ज्ञानियों में देव को भी ले सकते हैं। कुछ कम, कुल कम हुआ है, कुछ कम करना। अभी अरविंद एकदम एक्सपर्ट हो गए, रोज बैठते ना। विशेषार्थ, तीनों मिथ्या ज्ञानी जीवों में, ये 3 मिथ्या ज्ञानी कौन से मंजू? विभंग मत्य ज्ञानी, शुद्धा ज्ञानी और विभंग ज्ञानी। चार घाती कर्मों का जगन्य अनुभाग बंध संयम के अभिमुख होने पर होता है, इसलिए तो इनके जगन्य और अजगन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है। इसी प्रकार गोत्र कर्म का जगन्य अनुभाग बंध सम्यक्त के अभिमुख हुए सातवें नरक के नारकी के होता है, इसलिए यहाँ इसके भी जगन्य और अजगन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है। शेष कथन सुगम। अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतरकाल नहीं है, अंतरकाल नहीं है चाहिए था, जगन्य नत्य अंतरम, ये अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है चाहिए, वो जगन्य शब्द निकाल देना। क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्षपक के होता है और अजगन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल उग के समान है, कितना होगा मंजू मंजू अजघन्य चार घाती कर्म तो कैसे कर्म है, ये तो ध्रुवबंदी है क्योंकि हम मूल प्रकृति की बात देख रहे हैं। तो अजघन्य अनुभाग बंधन नहीं हो ये कब होगा? हाँ, ग्यारहवें गुणस्थान की अपेक्षा श्रेणी में उपशम श्रेणी तो ओहो के समान है। अपनी मार्गणा तो सम्यक अभिनिबोधिक ज्ञानी की है तो यहाँ मरे तो भी देव में तो वही मार्गणा चालू रहेगी। मनुष्य संबंधी मार्गणा होगी तो पूरा अंतर्मूर्त घटित करना पड़ता है। यहाँ तो मरकर देव में जाएंगे तो भी मार्गणा वही रही अभिनिबोधिक ज्ञानी की, तो एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक। वेदनीय और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागर है। साधिक इसीलिए लिया, वो आदमी क्षायिक भी हो जावे तो साधिक हो जाते, मार्गणा तो वही रही और वो उसका जघन्य तो कोई भी कर सकता है मध्यम परिणाम वाला। अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर ओगो के समान है, याद है लक्ष्मी कितना है? एक समय से मध्यम परिणाम में जघन्य होता है और अजघन्य, हाँ तो उपशम श्रेणी में होगा कि नहीं होगा? जहाँ उपशम श्रेणी नहीं वहां हम चार समय कहेंगे। उपशम श्रेणी में तो उसका ग्यारहवें गुणस्थान में अंतर्मूर्त घटित होगा ना, एक समय से अंतर्मूर्त देखो ओह में देख लो कन्फर्म करो। जघन्य का प्रकरण 57 पर ही है। जघन्य का अंतर एक समय संख्यात लोक और अजघन्य का एक समय अंतर्मूर्त उपशम श्रेणी है ना, पेज नंबर 57। वो जघन्य का प्रकरण है तीसरी लाइन नीचे का पैराग्राफ। ये उपशम श्रेणी में होगा। जैसे हमने चार घाती कर्म का भी जघन्य लिया था ऐसे इसका भी ले। जिस मार्गणा में उपशम श्रेणी नहीं है वहां हम चार समय घटाते। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागर है। साधिक 66 सागर सम्यक दृष्टि में मनुष्य आयु का करेंगे। अच्छा उसने जघन्य बांधा ही नहीं, अजघन्य बांधता रहा, कितना करता तो उसकी बात नहीं। यहाँ पर पृथत्व मास कैसे होगा समय दृष्टि के? हाँ पृथत्व उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागर है। किसमें? हाँ अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर का लोक के समय। अजघन्य कोई भी आयु हो उससे कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पूर्व कोटि के अंतर लेना और मध्यम के साधिक मास लेना। और उत्कृष्ट में साधिक 66 सागर लिया, सम्यक में रहने का काल लिया लंबा। इसी प्रकार अवधि दर्शनी और सम्यक दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। किसमें? साधिक 66 वो जो क्षायिक और इसका मिलकर जो काल है, सम्यक तो में रहने का मैक्सिमम काल लिया साधिक 66 साल। अभी उसमें वो आयु बांधने का जो कुछ है, अन्य आयु का जो काल है वो सब लेके अभी कुछ कम तो करना ही पड़ेगा उसमें। विशेषार्थ, इन दोनों सम्यक ज्ञानियों में दोनों क्यों लिखा? अच्छा अच्छा, नहीं शाही पर औपशमिक मनुष्य के लिए चार सौ पांच पृष्ठ। अभी निबोधित ज्ञानी नीचे का पैराग्राफ, उसमें नीचे से पांचवी लाइन देख लो। मनुष्य के जघन्य अनुभव बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 साल। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 साल। अब देवायु के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 साल। क्योंकि वो कुछ कम में वो तो बांध कर फिर नीचे आना पड़ेगा। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 साल। तो दोनों में गठित यहाँ हम लिख के रखेंगे पेज 405। ये मनुष्य के बारे में घटित होता है। अपने 68 पेज पर अभी हमने आयु कर्म की बात पढ़ी थी अभिनिबुद्धिक ज्ञानी में, विशेषार्थ के ऊपर की तीसरी लाइन। तो उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 साल कर मनुष्य आयु की अपेक्षा देखा है उन्होंने, और इसका रेफरेंस 405 पेज पर है। अभी हम विशेषार्थ पढ़ने वाले हैं। इन दोनों समय ज्ञानियों में दोनों में मेरे ख्याल से औपशमिक छाया समय दृष्टियों में कहते हैं, तीनों लिखना चाहिए था। ठीक है, क्यों? विभंग ज्ञानी थोड़ी है, अवधि ज्ञानी है, ये लड़ सकती है। अवधि ज्ञान तो फॉलो हो सकता है ना, अनुगामी हो सकता है। देखो, इन दोनों समय ज्ञानियों में अभी तीनों होना चाहिए था शायद, देखेंगे क्या। चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध शपक श्रेणी में अपनी बंध विच्छित्ति के अंतिम समय में होता है। अच्छा, और गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध मिथ्यात्व के अभिमुख होने पर अंतिम समय में होता है, क्योंकि उच्च गोत्र ही बांध रहे हैं ना ये सारे, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया। तथा इन पांचों के यानी चार घाती और गोत्र अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल उपशम श्रेणी में उपशांत मोह गुण स्थान में एक समय रहकर मरण की अपेक्षा एक समय, और उपशांत मोह में उपशांत उपशांत पूरे काल तक रहकर उतरने की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त उपलब्ध होता है। वैसे चार घाती को एक साथ लेते हैं, परंतु हम मोह का लेना है तो दसवें ग्यारहवें फिर दसवें ऐसा ले सकते हैं। ओग से भी इस यह इतना ही उपलब्ध होता है, इसलिए यह अंतर ओग के समान कहा है। वेदिनी और नाम कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय होने से इनके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय का ख्याल में ही बात यह संभव है। ये दोनों सम्यक ज्ञानी फिर दोनों लिखे अपने उत्कृष्ट स्थिति के प्रारंभ में और अंत में, जघन्य अनुभाग बंद करे और मध्य में अजघन्य अनुभाग बंद करते रहे। इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंद का उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागर कहा है। इन दोनों कर्मों के उनसे वेदिनी और नाम, जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त ओग के समान यहाँ भी घटित हो जाता है, यानी वो उपशम श्रेणी में, इसलिए वह ओग के समान कहा है। इसी प्रकार आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का यथा योग्य विचार कर अंतरकार ले आना चाहिए, शेष कथन सुगम है। ये दोनों दोनों लिखा उन्होंने, तीनों चाहिए ना, तीनों हाँ सर चल सकता है, हाँ ना, तीनों करना, नहीं नहीं वो तो विशेषार्थ है ना, इन तीनों साधिक 66 सागर तक रहेगा विज्ञान का पार। आपको देखना है क्या? काल में ही होगा ना, हाँ देखो इसका अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट काल देख रहे हैं अरविंद भाई बताएंगे हमको, ये शायद वो भूल से दोनों दोनों लिखा है, वही तीनों चाहिए। तीनों लिखना चाहिए था, मति शुद्ध अवधि ज्ञान तीनों का इकट्ठा लिया ना, 66 सागर प्लस 4 पूर्व कोटि। साधिक 66 सागर में 66 सागर प्लस 4 पूर्व कोटि, ये तो हो गया अपना। अब मन परे ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। चार घाती कर्म क्षपक के, गोत्र कर्म का असंयम के अभिमुख वाले को होगा ना, मन परिज्ञानी में क्या लेते हैं, असंयम के अभिमुख, इसलिए उसका अंतर नहीं होगा। और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है उपशम श्रेणी में। एक समय तो मरण होकर उसकी मार्गणा पलट जाएगी, इसलिए नहीं वरना अंतर नहीं होगा, अंतर घटित करने के पूरा अंतर्मूर्त ही लेना पड़ेगा। जगह में उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त एक समय की बात ही नहीं की उन्होंने, यानी 11वां गुणस्थान पूरा लेना। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है, क्योंकि मनोपरे ज्ञान का काल कुछ कम एक पूर्व कोटि, क्योंकि 8 वर्ष के बाद संयम धारण करेंगे, मनोपरे ज्ञान प्रकट होगा, तब एक बार जघन्य किया जघन्य वेदनीय का और फिर अंत में एक बार किया। अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर काल ओग के समान है, यह अंतर्मूर्त होगा। नहीं वेदनी और नाम का तो एक समय बीच में हो सकता है ना, एक समय से अंतर में। एक समय तो कहीं पर भी होगा और अंतर्मूर्त श्रेणी में लेना, मध्यम परिणाम होने से कभी भी उसका एक समय अंतर्घटित हो सकता है। चार घाती कर्म के लिए ऐसा नहीं हुआ था। आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है, क्योंकि मन परे ज्ञान मार्गणा है तो उस पूरा मार्गणा का काल ही कुछ कम पूर्व कोटि और आयु का बंध अंतर पूर्व कोटि पहले कर सकता है, तो पहला अपकर्ष और अंतिम अपकर्ष। इसी प्रकार संयत जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ मन परिज्ञानी जीवों में भी चार घाती कर्म और गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध शपक श्रेणी में चार घाती के लिए अपनी विच्छित्ति के अंतिम समय में होता है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है। गोत्र का जघन्य उसके साथ क्यों लिया? ऐसा लिखना है, चार घाती कर्म और गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध शपक श्रेणी में अपनी विच्छित्ति के अंतिम समय में, यहाँ लिखना और यानी गोत्र के लिए बता रहे, असंयम के अभिमुख जीव के होता है। वो दोनों गोत्र कर्म का भी कवर हुआ है ना, इसलिए उसका अंतर नहीं है ऐसा कह दिया। मन परिज्ञानी जी उपशम श्रेणी पर आरोहण कर यदि मरता है तो उसके मन परिज्ञान नहीं रहता, अतएव मन परिज्ञानी जीवों में उक्त पांचों कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल उपशम श्रेणी पर आरोहण और अवरोहण की अपेक्षा ही संभव है। यह तो उपशांत मोह का स्वस्थान की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अतः यहाँ पांचों कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर काल अंतर्मूर्त कहा। एक ख्याल में एक बार मन परे ज्ञान का उत्कृष्ट अवस्थिति काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है। किसी जीव ने मन परे ज्ञान के सद्भाव में एक समय के अंतर से वेदनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध किया और किसी ने मन परे ज्ञान के काल के प्रारंभ और अंत में इसका जघन्य अनुभाग बंध किया और मध्य में अजघन्य अनुभाग बंध करता रहा, तो यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि उपलब्ध होता है। यही कारण है कि यह उक्त प्रमाण कहा है। ओग से इनके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त घटित करके बतला आए हैं, वह यहाँ भी संभव है, इन श्रेणी में उपशम श्रेणी में, इसलिए यह ओग के समान कहा है। शेष कथन सुगम। सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत। मन परिज्ञानी और संयम इन जनरल बात इकट्ठे ली थी, क्योंकि वहां उपशम श्रेणी संभव थी। कौन सी? वो 10-11 गुणस्थान, परंतु यहाँ तो 9 गुणस्थान तक की बात है। तो सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। यहाँ फिर ऐसे लेना, चार घाती कर्म क्षपक के होगा 9 के अंत में और गोत्र कर्म का ये संयम से मिथ्यात्व में जाने वाले के होगा। वेदनी आयु और नाम कर्म का भंग मन परे ज्ञानी जीवों के समान है। इतनी विशेषता है कि वेदनी और नाम कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर चार समय है, क्योंकि अभी इसमें तो उपशम श्रेणी का वो उपशांत मोह तो संभव नहीं है, 9 तक ही है, इसलिए वो तो कहीं पर भी जब जघन्य कर रहा है तब अजघन्य का अंतर होगा और ये मध्यम परिणाम है, इसलिए चार समय घटित होगा। आयु के बारे में तो जो हमने देखा था मन परिज्ञानी में, जघन्य और अजघन्य दोनों का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अवंतर पूर्व कोटि में कुछ का। परिहार विशुद्धि संयता और संयता संयत जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, इसमें भी ऐसा ही लेना है। परिहार विशुद्धि में क्षपणा करने वाले के दर्शन मुखी क्षपणा वाले के, इसलिए एक समय के लिए जघन्य होता है, वो दोबारा उसका नहीं होगा। परंतु अजघन्य का अंतरकाल भी नहीं कहा उन्होंने। अजघन्य का तो अंतर होगा, क्षपणा करेगा तो नीचे लिखा इतनी विशेषता है कि परिहार विशुद्धि से ये जीव में चार घाती कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य उत्कृष्ट अंतर एक समय है। ख्याल में है ना बात? चार घाती कर्मों का जघन्य कब करेगा वो? दर्शन मुखी क्षपणा करने वाला, परिहार विशुद्धि वाला जो, एक ही समय के लिए। यानी चार घाती कर्म का जघन्य तो दर्शन मुखी क्षपणा वाला करेगा, और गोत्र का जघन्य सामयिक क्षेत्र का स्थापना के समय। संहिता संयत में भी ऐसे ही लेना, वह मिथ्या तो के सन्मुख लेना, और चार घाती कर्म का जघन्य संयम के सन्मुख लेना, इसलिए उसका अंतर नहीं होगा। परंतु परिहार विशुद्धि में क्योंकि वो दर्शन मुखी क्षपणा में अंतिम समय में जो अंतिम अनुभाग बंध है, हाँ, वो जघन्य होगा, फिर दोबारा उसका अजघन्य हो सकता है। मंजू ख्याल में आती बात? ये परिहार विशुद्धि में बात ख्याल में आई? संयता संयत में जघन्य कब होता है? पांचवें से सातवें में जाने वाले के। परिहार विशुद्धि में चार घाती कर्म का जघन्य कब होगा? जहां विशुद्धि मैक्सिमम है, तो दर्शन मौखिक क्षपणा करने, यानी जो क्षयिक समय तो प्राप्त कर रहा है उसके वो, तो उसके अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय में जो अनुभाग बंध है एक समय के लिए, जहां जहां करण परिणाम होते हैं वहां एक एक समय में अनुभाग बंध बदलता है। बंध की बात, अनुभाग कांडक तो अंतर्मूर्त में होता है, अनुभाग बंध प्रति समय घटता चला जाता है। अनुभाग बंध अप्रशस्त में, प्रशस्त में बढ़ता चला जाएगा, यानी कोई भी अनुभाग बंध लगातार ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, एक समय के लिए रहेगा। यह हम जघन्य कर रहे हैं, चार घाती का जघन्य लेना है क्योंकि वो अप्रशस्त है, उसका मिनिमम बंध वहां होगा, फिर वो आगे चला गया, नहीं कृत कृत्य वेदक होगा ये, तो वो अनुभाग बंध फिर अजघन्य हो जाएगा, क्योंकि अनुभाग बंध तो होगा उसके, शायक होने पर भी कुछ अनुभाग बंध तो, यानी ये बंध तो रुका नहीं इन प्रकृतियों का, जघन्य एक समय के लिए हुआ, फिर अजघन्य चालू हो गया। ख्याल में यही बात है? परिहार विशुद्धि वाला दर्शन होने की क्षपणा ने क्षायिक समय तो प्राप्त कर रहा है, उसका जो अंतिम अनुभाग बंध है करण लब्धि में वो मिनिमम है। देखो स्थिति में तो कोई भी बंध होगा, स्थिति का तो लगातार अंतर्मूर्त तक रहता है, और अनुभाग में प्रति समय चेंज होता है, ये विशेषता खास ये पढ़ते समय ख्याल में आया। ऐसे तो हम तो रटते थे कि चार बातें कौन सी आवश्यक होती है, अधकरण से ही होती है, विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती है, प्रशस्त कर्मों का अनुभाग चतुस्थानगत अनंत गुणा बढ़ता है, हमने कहा प्रति समय बढ़ता है लिखा, इसका अर्थ एक समय में एक ही अनुभाग बंध होता है और वो लगातार दो समय तक भी नहीं रहता है। ख्याल में है ना? ऐसा कहते तो है हम, और प्रशस्त का प्रति समय अनंत गुणा घटता अनुभाग बंध,
बोल जाते थे।
जब यहाँ काल के और अंतर की बात आती है तो वो ख्याल में आता है कि अरे वो एक समय के लिए था, ये देखो आगे, ये हमने परिहार विशुद्धि और संहिता संहित की बात देखी। अब असंयत जीवों में, संयम मार्गना की अपेक्षा असंयत जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाव बंध का, फिर जघन्य क्यों डाले यहाँ, अंतरकाल नहीं है कहना चाहिए, क्योंकि असंयतों में चार घाती का जघन्य कब होगा मंजू, असंयत मार्गना है और चार घाती का आप बताना, संयम के समय, क्योंकि चौथे असंयम ही है ना, और वो भी चौथे में से सातवें में जाने वाला है, और गोत्र का जघन्य कब होगा, हाँ चौथे की विशुद्धि ज्यादा होगी, पहले से सातवें में जाने की अपेक्षा चौथे से सातवें में जाने वाले की विशुद्धि ज्यादा
होगी,
ये हमने पहले भी कभी भी देखा है। और यहाँ गोत्र कर्म का जघन्य बोलो, सातवें नरक में सम्यक तो के समय हुआ, चार घाती कर्मों का है, शेष कर्मों का भंग नपुसक वेदी जीवों के समान है। नपुसक वेदी का अर्थ क्या है, अभी असंयम मार्गना है, अभी हमने गोत्र की बात देखी थी, गोत्र के जघन्य का मेरा भी प्रश्न है, गोत्र के जघन्य का अंतर कितना होगा, गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतर कितना होगा,
असह्य मारना है ना, असह्य तो एक से चार गुण होता है, असह्य असह्य में एक से चार गुण,
कुछ कम अर्ध पुद्गल करा
उत्कृष्ट और मिनिमम तो
मिनिमम अंतर मूर्त होगा,
तो मैंने मिनिमम,
अब एक से अंतर मूल एक समय से मिनिमम बता दिया, हाँ मैक्सिमम, क्योंकि असंयम ही रहा हो, सम्यक तो प्राप्त किया उसने नरक में, फिर भी असंयम मार्गना चालू रही उसकी, फिर बाद में फिर नित्यात्व में चला गया अर्ध पुद्गल परिवर्तन के काल, फिर बाद में उसने किया, इसलिए नपुसक वेदी के समान बताया उन्होंने। वेदिनी में नाम में उद्घटित करो, अभी जघन्य जघन्य का जघन्य अंतर
तो
एक समय, जघन्य का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोग, असंख्यात लोग का
एक से चार
असंयमी रहते हुए, विशेषार्थ सामयिक और छेदोपस्थापना संयम जीवों को उपशांत मोह गुणस्थान की प्राप्ति न होने से इनमें वेदनी और नाम कर्म के अजघन्य अनुभाव बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर चार समय का। परिहार विशुद्धि संयम जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग का बंध सर्व विशुद्धि अवस्था के होने पर एक समय तक होता है, इसके बाद पुनः अजघन्य अनुभाग बंद होने लगता है, इसलिए यहाँ चार घाती कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय कहा है, अन्यत्र सर्व विशुद्धि अवस्था दो समय तक हो सकती है, परंतु यहाँ यहाँ तो करण परिणाम है ना, शेष कथन सुगम है, स्वामित्व और काल का विचार कर अंतरकाल ले आना चाहिए। अब लेशा मार्गना, कृष्ण लेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। कृष्ण लेशा वाले चार घाती का जघन्य कौन करेगा, तो चौथे गुणस्थान वाला करेगा, क्योंकि चौथे तक है ना कृष्णलेश, तो चौथे वाले की जहाँ विशुद्धि ज्यादा है कृष्णलेशा में रहते हुए, तो उसको यहाँ लेना है, तो उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर का। कुछ कम क्यों कहा, क्योंकि भले मनुष्य में उसके हो जाएगी परंतु उसकी लेशा पलट जाएगी, हमें कंटिन्यूअस कृष्ण लेशा चाहिए। तो नरक में उत्पन्न हुआ, समय दृष्टि हुआ, विशुद्धि हुई, उसने एक बार जघन्य किया, फिर अंत में फिर दोबारा जघन्य किया। बीच में उसको मिथ्यात्व में लाओ, समयत्व में लाओ, कुछ बात नहीं, हमें वो कृष्ण लेशा चालू है उसे। थ्रोड समय दृष्टि रखो, शुरुआत में एक बार जघन्य किया, अंत में एक बार जघन्य किया। अब अजघन्य अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय है, सातवें नरक। हाँ, परंतु कुछ कम इसलिए वहां जाने के अंतर्मूर्त बाद समय तो प्राप्त करेगा। कृष्ण लेशा में घाती का जघन्य किसके होगा? समय दृष्टि के होगा। इसलिए वहां गया, समय तो प्राप्त किया और उसमें विशुद्धि प्राप्त की, तब जाके उसका जघन्य अनुभाग बंद हुआ। अजघन्य के लिए क्या सोचना है? जब वो जघन्य कर रहा है तब अजघन्य का अंतर होगा। अब कृष्ण लेशा में वो तो श्रेणी वीणी की तो बात हो ही नहीं सकती, तो अजघन्य के अंतर होने का क्या तरीका है? वो जघन्य बंद कर रहा है, तो मैक्सिमम कितने समय तक लगातार हो सकता है? तो दो समय, एक से लेकर दो समय, 70 पेज पर्यंत। वेदनीय और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 साल है। अभी यहाँ जाने के पहले एक अंतर मुहूर्त, वो तो वेदनीय क्योंकि मध्यम परिणाम में करता है। कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट काल कितना है? साधिक 33 साल। हाँ, दो अंतर मुहूर्त अधिक कर सकते हैं। जघन्य वो पर्याप्त जघन्य पहले हमने देखा था, एक अंतर्मुहूर्त उसमें जाने के पहले वाली बात करना है नहीं, परंतु वो हम किसके लिए वो सोचा था हमने? वेदनी आयु के लिए सोचा था क्या? वेदनी नाम के लिए सोचा था, अन्य किसी के लिए सोचा था? परंतु वो मध्यम परिणाम है, उसको तो
अपन जगह होगा।
जघन्य तो मध्यम परिणाम में होता है उसके,
पर अपर्याप्त दशा में मध्यम परिणाम
होगा ना, मध्यम ही तो होगा।
तो दोनों अंतर होते
नहीं, पहले कहा हमने किसी अन्य बात में देखी थी वो बात?
हमने एक अंतर मुहूर्त लिया था,
वो उत्कृष्ट के लिए देखा था, उत्कृष्ट के लिए देखा था। आप नहीं समझे, और किसका उत्कृष्ट देखा था हमने? अतिक्रमों का उत्कृष्ट देखा था। वहाँ तो अपर्याप्त दशा में उत्कृष्ट नहीं कर रहा था, मैं तो वेदिनी नाम का जघन्य तो कर ही सकता है मध्यम परिणाम वाला। अरे एक इंद्रिय भी कर सकता है तो क्या? समझ में आई बात? पहले उत्कृष्ट की बात आई थी, तो उत्कृष्ट का बंध कृष्ण लेशा वाला नरक में जाने के सम्मुख वाला भी करेगा, और नरक से निकलकर फिर वो नहीं करता उस अंतर्मुहूर्त में। क्यों? क्योंकि वह तो अपर्याप्त दशा है। संगी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीव उत्कृष्ट बंध करता है। उत्कृष्ट में हमने देखा था जाने का पहले वाला अंतर्मुहूर्त लेना, आने पर नहीं लेना, और वो भी घाती कर्मों के लिए था। यहाँ वेदिनी और नाम तो मध्यम परिणाम में होता है, तो जाने के पहला भी अंतर्मूर्त लेना, आने के पश्चात भी अंतर्मूर्त लेना, दो अंतर्मूर्त बढ़ा, साधिक में दो अंतर्मूर्त बढ़ा। अभी हमने जघन्य का देखा अंतर, अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर चार समय है। मार्ग नाम की कौन सी चल रही है हमारी? कृष्ण लेशा। मध्यम परिणाम में जघन्य करेगा तो लगातार चार समय तक कर सकता है। आयु कर्म का भंग विभंग ज्ञानी जीवों के समान है। कृष्ण लेशा में आयु का बंध है, और कृष्ण लेशा में जघन्य आयु है, तो जघन्य आयु कौन बांधता है? तो मनुष्य 3 इंच बांधता है और उसकी कृष्ण लेशा अंतर्मुहूर्त रहेगी और उसमें एक ही अपकर्ष होगा, 2 बार नहीं होगा। तो जघन्य का एक समय से अंतर्मुहूर्त अंतर होगा और अजघन्य के लिए 6 महीने में
क्या शादी? क्या
शादी
करती सागर?
क्योंकि यहाँ मनुष्य में आयु बांधकर इमीडिएटली उसी लेशा का छोटा काल है जिस अंतर्मुहूर्त में आयु बांधी है, उसके पश्चात अंतर्मुहूर्त रहकर फिर मरण होगा। मान लेते कृष्ण लेशा में भी आयु बांधी तो फिर लेशा भी पलटेगी, नील होगी, कपोत लेगी, वो फिर बाद में कृष्ण लेशा में आकर मरेगा, तो उसकी थ्रू आउट कृष्ण लेशा नहीं रही, तो थ्रू आउट कहाँ रहेगी? नारकी में। तो उसमें आयु बंधे के 2 अपकर्ष में बड़ा अंतर कितना होगा? तो कुछ कम 6 महीना, इसलिए वो घटित होगा यहाँ पर। इसलिए विभंग ज्ञानी जीवन के समान कहा, क्योंकि जघन्य आयु मनुष्य 3 इंच के बंधे हैं। इसलिए वो अंतर्मुहूर्त काल, एक समय से अंतर्मुहूर्त काल घटित होगा अंतर का। गोत्र कर्म का भंग कृष्ण रेशा की बात है, सामान्य नारकियों के समान है। तो मिनिमम अंतर जघन्य का कितना होगा लक्ष्मी जी आप बताएंगे? पहले जघन्य किसके होता है? गोत्र कर्म का जघन्य किसके होता है? कृष्ण लेशा में, सातवें नरक में सम्यक तो के सन्मुख वाले, उसके जघन्य में फिर दोबारा लौटकर जघन्य करने के लिए कितना काल लगेगा उसको? हाँ, जघन्य किया एक बार, सम्यक तो प्राप्त किया, फिर दोबारा उसको सम्यक तो प्राप्त करना है मिथ्यात्व में आकर अंतर्मुहूर्त, क्योंकि तभी तो जघन्य करेगा दोबारा। तो जघन्य का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त, और अभी उत्कृष्ट अंतर कितना होगा आप ही बताएंगे? 33 साल बराबर। समझ में आते हैं ना? अभी तो गोत्र कर्म का भंग सामान्य नारकियों के समान है, उसका अर्थ समझ में आया? यानी अंतर्मूल से 33 अगर कुछ कम। ये हो गया कृष्ण लेशा का। नील और कपोत लेशा वाले जीवों में 4 घाती कर्म वेदनीय और नाम कर्म का भंग कृष्ण लेशा के समान है। वहां 33 अगर लिया है, यहाँ जो कुछ है पहले में पहले 4 घाती कर्मों का कैसे लेना, जघन्य कौन करेगा? समय दृष्टि करेगा, तो शुरुआत में एक बार करेगा, अंत में करेगा, उसकी अपनी अपनी स्थिति समझना, उससे कुछ कम लेना। नहीं, नील कपोत में 4 घाती कर्म का मनुष्य करेगा क्या? नहीं,
मनुष्य
संयम के समन्वय नहीं लेता है। नील और कपोत समय दृष्टि करेगा, पर नारकी भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है मुझे मत। तो कृष्ण लेशा के समान बता दिया। यानी नील और कपोत लेशा का काल जानकर उसका अपना काल समझना। नील लेशा वाले के तो 6ठे नरक में ले गए हैं उत्कृष्ट का अंतर।
17 22
अगर होगा कुछ कम 22 साल। हाँ, कपोत का 7 साल। गोत्र कर्म, अभी गोत्र कर्म यहाँ तो सातवें नरक को कृष्ण लेशा में तो हमने लिया। नील और कपोत के लिए क्या देखना पड़ेगा? गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। नहीं ये तो नाम और वेदिनी और नाम के समान ही इसका होगा ना कि नहीं? तो अंतर्मुख क्यों का? तो समय दृष्टि मनुष्य को लेना है कि नारकी को लेना है? तो नारकी को लेते हैं तो उत्कृष्ट अंतर ज्यादा क्यों नहीं लिया? अच्छा गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध
नीच गोत्र का होगा,
नीच गोत्र का होगा। अच्छा होने दो। नारकी में देखो आप कहाँ से पढ़ा आपने? गोत्र कर्म का भंग वेदिनी के समान है, अपने अपनी कुछ कम स्थिति कहनी चाहिए, ऐसे नारकियों में लिखा था। परंतु इसका अर्थ नील लेशा में मनुष्य में घटित करेंगे तो ही अंतर्मूर्त होगा। स्वामित्व लेना नील और कपोत लेशा का, जघन्य का स्वामित्व। पेज नंबर 24 सामान्य नारकी को। ओ अग्नि का एक वायु का
सर्व विश्व धरती का
तो उसके तो लेशा पलट, ये मैंने कहा कुछ तो लेशा पलटने वाले भी लेना चाहिए। मैं तो मनुष्य पर घटित करती थी। कृष्ण लेशा में नारकी लेना है सातवें नरक का, यह अंतर्मूर्ति इसलिए लिया। हाँ वो सर्व विशुद्ध बादर पर्याप्त अग्नि का ही पाई पाई। इसलिए उसका उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, क्योंकि नील लेशा अंतर्मूर्त तक रहेगी। उसके शुरुआत में एक बार किया जगन्य और अंत में एक बार किया। जब नारकियों की मार्गणा चल रही थी तो नरक का एक भाव लेना था हमें, इसलिए वहां उनके लिए जगन्य। नारकियों में नील लेशा का अपना काल है, कपोत लेशा का अपना काल है। भले नारकियों में जब हमने गोत्र पहली दूसरी तीसरी चौथी पृथ्वी में इसका गोत्र का जगन्य कब होगा तो समय दृष्टि करेगा। तो शुरू में एक बार किया एक अंतर्मूर्ति के बाद समय तो प्राप्त करके, और अंत में एक बार किया। अंत में तो उसको समय तो में ही रखो, उसको मारो मत, यानी वो मिथ्या तो में लाने की जरूरत नहीं है, समय दृष्टि ही रखना उसको। फिर उसने जगन्य किया। तो कुछ कम अपनी स्थिति नारकियों में बताई, परंतु यहाँ ओग में इन जनरल नील लेशा वाले पूरे सभी जीव समास उसमें अगर जगन्य की बात करनी है तो बादर अग्नि का एक वायु का एक सर्व विशुद्ध वाले उनके गोत्र का, अभी नीच की उच्च की बात नहीं, नीच का ही करेंगे, वो जगह नहीं हो रहा है उनके लिए। क्या अभी तो मूल प्रकृति चल रही, फिर आगे क्या पढ़ेंगे आपको, आगे की बहुत उत्सुकता होती है जानने की, हिंदी का आगे है। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर दो समय है, क्योंकि अभी सर्वविशुद्ध लिया है ना, इसलिए विशेषा कृष्ण लेशा में चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध सम्यक दृष्टि के सर्व विशुद्ध परिणामों से होता है। ये परिणाम एक समय के अंतर से भी हो सकते हैं और कुछ कम 33 सागर के अंतर से भी हो सकते हैं। ही सकते लिखे हो सकते हैं, वो ही हो गया है, उसको हो करना। यही कारण है यहाँ इन चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंधता जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर कहा है। इनके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर दो समय है, यह इसी से स्पष्ट है। देखो आगे किसकी बात चल रही है, चार घाती कर्मों के जघन्य का अंतर एक समय से कुछ कम 33 सागर देखा, उन्हीं के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है उत्कृष्ट अंतर दो समय, क्योंकि जब जघन्य कर रहा है तब अजघन्य का अंतर होगा। यह इसी से स्पष्ट है कि इनके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय, जघन्य का जो काल है वो अजघन्य का अंतर है, क्योंकि अन्य कोई उपाय नहीं है। जो अजघन्य का अंतर कभी कभी हम श्रेणी में देखते हैं, अभी ये तो सारे अशुभ लेशाओं की बात चल रही है। वेदनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध जघन्य बंध योग्य मध्यम परिणाम वाले किसी भी जीव के हो सकता है। ये परिणाम एक समय के अंतर से भी हो सकते हैं और साधिक 33 सागर के अंतर से भी। यही कारण है यह इन दोनों कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर कहा है। यहाँ नील और कपोत लेशा में चार घाती कर्म वेदनीय कोमा लगा रहे और नाम कर्म का भंग कृष्ण लेशा के समान कहा है, सो इसका अभिप्राय इतना ही है कि कृष्ण लेशा के समान नील और कपोत लेशा के काल को जानकर अंतरकाल ले आना चाहिए। शेष कथन सुगम। गोत्र कर्म की बात उन्होंने नहीं उठाई, परंतु वो तो बादरग्नि का एक वायु के होता है जघन्य, और उसकी एक लेशा अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहती। लेशा वाले जीव चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। पीतलेशा में कब होगा, कौन से क्षेत्र? दर्शन सर्वविशुद्ध लेना है और वो अप्रमत्ता वाला ले सकते हैं, दर्शन मुखी क्षपणा काल वाला ले और अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय बताए, यानी दर्शन मुखी क्षपणा वाला लेना। शेष कर्मों का भंग सौधर्म कल्प के समान है। अब हम देखते हैं शेष कर्म वेदनीय और नाम, उसका जगन्य तो मध्यम परिणाम वाले के तो पीतलेशा कंटिन्यूस चलनी चाहिए, शादी दो साल पद्मलेशा में कितना होगा शादी 18 साल है ना। हाँ गोत्र कर्म का जगन्य वो नाम वेदिनी नाम जैसा ही गोत्र का होगा ना, क्या नहीं? नहीं ना, पीतलेशा में गोत्र कर्म का जगन्य कब होगा? पीतलेशा में मिथ्या दृष्टि को लेना है, सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि क्या लेना है देख लो स्वामी। अभी हमने कौन सा पेज देखा था?
24 और वहाँ के देवों में श्री कृष्ण का दृष्टि
किसमें
देवों ने उपरी विवेक का दूसरे पृथ्वी के समान
तो गोत्र में भी परिवर्तमान मध्यम परिणाम मिथ्या दृष्टि लिया था। और वेदनीय नाम में तो दोनों को लेना समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि। इसी प्रकार पद्मलेशा वाले युव में भी जानना चाहिए गोत्र कर्म का परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि लेना, वेदनीय नाम में समय दृष्टि भी ले सकते मिथ्या दृष्टि भी ले सकते, यानी पीतलेशा का जो उत्कृष्ट काल है साधिक दो सागर शुरुआत में जगन्य किया लास्ट में जगन्य किया वो ले सकते हैं। उत्कृष्ट किसका अंतर
गोत्र कर्म के लिए?
हाँ
पद्मलेशा में एक समय से शादी कर
हाँ अजगंज का अंतर
एक समय से
चार समय मध्यम परिणाम है। देखो ये हमने पढ़ा यहाँ पर इतनी विशेषता है कि वेदनी आयु नाम और गोत्र कर्म का भंग सहस्रार कल्प के समान है। आयु में हम पीतलेशा में आयु को कैसे देखेंगे? मेरे ख्याल से पीतलेशा में आयु का जगन्य देव करेंगे देख लो 24 पर सौधर्म कल्प के समान ही है ना, क्योंकि एकेंद्री की आयु वो बांधे ही है ना। हाँ सौधर्म कल्प निकालो आयु दूसरी पृथ्वी के समान। हाँ
कुछ
कम चौमस आगे। हमारे देवों में अगर घटित करना है पद्मलेशा में, क्योंकि पद्मलेशा वाले मनुष्य 3 इंच तो देव गति बांधेंगे या देवायु बांधेंगे, इसलिए उसका जगन निबंध करने वाले तो ये 3 इंच आयु बांधने वाले देव हो गए। शुक्ल लेशा वाले जीवों में 4 घाति कर्मों के जगन्य और अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतरकाल ओघ के समान है। 4 घाति कर्मों का जगन्य का अंतर नहीं, क्योंकि वो तो क्षपक के होता है, और अजगन्य का कहाँ होगा, उपशम श्रेणी में होगा, एक समय से अंतर। अजगन्य का देख लिया हमने, जगन्य का तो अंतर नहीं है। जगन्य रजगन वेदनीय और नाम कर्म के शुक्ल लेशा में देख रहे हैं। जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय है, वेदनीय का जगन्य तो परिवर्तमान में होता है। उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। यानी शुक्ल लेशा का काल लिया उत्कृष्ट, मध्यम परिणाम तो यहाँ आने पर भी हो गया। शुरू में एक बार किया, लास्ट में एक बार किया। और जगन्य अनुभाग बंध का अंतर का लोक के समान है। हाँ, अंतर्मूर्त क्यों नहीं, उपशम श्रेणी में होगा ना। आयु और गोत्र कर्म का भंग 9 ग्रहवेग के समान है। हाँ, क्योंकि शुक्ल लेशा में मिथ्या दृष्टि को लेना है। तो कैसे लेंगे गोत्र कर्म का, नीच गोत्र की बात ओ मिथ्या दृष्टि नीच गोत्र बांध सकते हैं। बंधेगा ना, देख लो, कंफर्म कर लो, उत्तर प्रकृति में देख लो, स्वामित्व देवों में देखना है ना। ट्वेंटी पेज पर है, नीच गोत्र की बात नहीं उठे वहां पर। हाँ देखती हूँ, नीच गोत्र का साधिक 18 सागर है। फोर्टी टू में आप क्या बता रहे हैं, काल देख रहे हैं। ये कि मुझे क्या बताना था। आपने ये पूछा था कि हाँ 220 पर मैंने अभी देखा वो अनुदिश से सलवार सीधी तक है, उसके ऊपर ग्रेवेक के बाद ऊपर के पैराग्राफ में ग्रेवेक में वही भंग है, इतनी विशेषता है। विशेषता में उन्होंने निज गोत्र को नहीं लिया है, यानी वो सामान्य ऊपर नीचे के देवों के समान ही है। तत्प्राय के मिथ्या दृष्टि जीव उसको बंद करेगा। कैसे मध्यम परिणाम होगा? हाँ, निज गोत्र का सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के होगा। निज गोत्र की बात कहाँ आई है? देखो, देवों के बाद 218 से शुरू हुई है। शुक्ल लेश हमें ये देखना है कि नीच गोत्र का कौन है। देखो, नीच गोत्र बात 219 पेज पर आई है, देवों में नीच गोत्र का ऊपर से पांचवी लाइन। अभी आगे देखेंगे नीच गोत्र और उच्च गोत्र का जगन अनुभाग बंद का स्वामी कौन है। परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला अन्यत्र मिथ्या दृष्टि जी, मध्यम वाला अन्यत्र मिथ्या दृष्टि लिया। नहीं, उच्च गोत्र के जगन्य से निज गोत्र का जगन्य कम होगा। अभी आपको उच्च स्वामित्व में शुक्ल लेशा में स्वामित्व देख लेते हैं। पेज नंबर 234 गोत्र, दोनों गोत्र नीचे से दूसरी लाइन मध्यम और परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला अन्यतर मिथ्या दृष्टि देव उक्त प्रकृति उनके जगन्य अनुभाग बंद का स्वामी है। ये ग्रेवेक तक लेना चाहिए, मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि लेना। नीचे से दूसरी लाइन पेज 234 वहीं पर आयु का भी जगन्य मिलेगा ना आपको कि नहीं? दोनों गोत्र को ले लिया 234 पर, वही वही इसीलिए मैं देख रही हूँ। मध्यम परिणाम है मिथ्या दृष्टि लेना है तो जाने के पहले भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? जैसे क्या आयु का नहीं नीच गोत्र पर करना चाहिए तो वहाँ जाने के पश्चात ही होगा। कुछ कम 31 साल
कुछ कम 31
साल किसमें
419
वहाँ कौन सी जाए? ठीक अंतर प्ररूपणा देख रहे शुक्ल लेशा में लेशा में हमने साधिक 18 सागर देखा था कहीं पर उच्च गोत्र का लिया परंतु नीच गोत्र का यहाँ तो इन जनरल उन्होंने गोत्र कर्म का जगंध लिया हमने कभी शुक्ल लेशा में हमने साधिक 18 सागर देखा था उत्कृष्ट के लिए देखो
उत्कृष्ट के लिए
रहने दो ना पर उत्कृष्ट के लिए भी तो उत्कृष्ट के लिए ऊपर का क्यों नहीं लिया मैं कहाँ है उत्कृष्ट की बात लेशा में देखना है उत्कृष्ट अनुभव हमने उस पर चर्चा भी की थी मैंने अभी बताया ना सारी घटा क्योंकि शुक्ल लेशा उन्होंने 18 सागर में घटित किए थे 361 शुक्ल लेशा में 361
शुक्ल लेशा
निज गोत्र के उत्कृष्ट अनुभाग उत्कृष्ट है वैसा जघन्य हमने देखा था अभी जघन्य में उन्होंने क्या लिया निज गोत्र उच्च गोत्र लिया शुक्ल लेशा में जघन्य उसका उत्कृष्ट लिया और यहाँ जघन्य में उच्च उत्तर लिया
उन्होंने शुक्ल का अनुभव सबसे कम बन देता है तो वहाँ पे तो शादी करना था बन देना चाहिए तो यहाँ पे नब्बे क्रिकेट सफेद सफा ये जो अभी हम लोग जो 72 से पढ़ रहे हैं वहाँ पे 90 क्रिकेट की बात
यहाँ यही लिया उन्होंने उच्च गोत्र के जघन्य अनुभव बंद का वो उच्च गोत्र का जघन्य बांधता है
कीर्तन जी घोष रहे हैं उन जगह में बार बार मुख्य बता
ये भी उसमें निज गोत्र लिया ही नहीं, निज गोत्र का अपना जगह ने हाँ क्रिक लिया, उसमें निज गोत्र को इंक्लूड नहीं किया। तिरंज गति त्रिक में क्या लिया उन्होंने, तिरंज गति तिरंज गत्यानुपुरी और उद्योत लिया है, क्योंकि ये विशेषार्थ है ना। ऊपर देखो ना, ऊपर के पैराग्राफ में नीचे से छठी लाइन तिरंज गति गत्यानुपुरी और उद्योत लिया। तो यहाँ लिखा क्यों नहीं कहीं पर, तो उस प्रकृति का अपना जगन्य भी तो हो सकता है ना। हाँ दंडक प्रथम दंडक ओक के समान है। स्त्रीवेद नपुसक वेद दंडक का भंग उपरिम गृह वेद के समान है, ऐसा वो दंडक देखने पड़ेगा। अभी जब वो पढ़ेंगे तब ख्याल में आएगा, अभी तो हम यही रुकेंगे उसको, क्योंकि वो सारे दंडक पहले से देखने पड़ेगी ना, इन्हें ओग में देखने पड़ेगी। जगन्य का ओग कहाँ शुरू हुआ है, अंतर में 371 पेज से। उसमें निज गोत्र कहाँ है, वहां तो नारकी में हो जाएगा ना। ओग में अगर लेते तो नारकी में होगा। चलो छोड़ो अभी उसको, अपना पेज नंबर है 70। आयु में तो कुछ कम 6 महीना ले सकते हैं ना, विशेषार्थ पीत लेशा में अप्रमत्त संयत के सर्व विशुद्ध परिणामों से 4 घाती कर्मों का जघन्य अनुभव बंद होता है। ऐसे परिणाम पीत लेशा के काल में 2 बार संभव नहीं है, इससे यहाँ 4 घाती कर्मों के जघन्य अनुभव बंद के अंतरकाल का निषेध किया है, तथा इनका जघन्य अनुभाग बंध का एक समय तक ही होता है। कहा न कोई कहा नहीं चाहिए, अनुभाग बंध एक समय तक ही होता है। इन्होंने ये बात क्लियर नहीं की हो तो क्षपणा इसलिए एक समय होता है। हाँ, क्योंकि उसके बाद अजघन्य होता है, उसका अर्थ क्या है, यदि वो अगर करण वाला लेते हैं, अन्य कुछ लेते हैं, तो फिर दोबारा लौट कर नहीं होता ना उसका, दोबारा अजगण्य होता है, नहीं वो क्षपणा में ही एक समय घटित होता है। इससे इनके अजगण्य अनुभाग बंध का जगन्य उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है, शेष कथन सुगम है। यही रुकेंगे अभी। जावाणी के